Good evening and Om Shanti. आप सब बहुत व्यस्त होते हुए भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ऑडियो प्लीज, ऑडियो, तो जिस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारी चर्चा होती रहती है। आप सब इसके बारे में सुनते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब इसके विषय में चर्चा होती है तो लगते है ओह फिर से वही सब्जेक्ट। तो इससे पहले कि मैं इस वक्तव्य की शुरुआत करूं, थोड़ा सा आप सबको जहां से हम आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसके विषय में एक दो बातें बता दूं। माउंट अबू राजस्थान, माउंट अबू सिरोही जो जिला है, वहां पर एक छोटी सी जगह है और पूरे राजस्थान में सिरोही जो है एक बैकवर्ड एरिया है, पर उस एरिया में ये जो हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जैसे कि हम कहेंगे एक जीवदान है, जीवन दान है आत्माओं के लिए। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक अनवरत सेवा इसकी चल रही है। ये डॉक्टर प्रताप मीणा जी है जो अभी वहां पर मेडिकल डायरेक्टर है। ये हॉस्पिटल के कुछ दृश्य है जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हॉस्पिटल में केवल एलोपैथी नहीं परंतु मैग्नेट थेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, स्पिरिचुअल काउंसिलिंग का अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। नीचे एक आया हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डीएनबी स्टूडेंट्स है, हमारे पास भी डीएनबी स्टूडेंट्स है फैमिली मेडिसिन के, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो डिजिटल एक्सरे ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, आजकल का जो युग है वो संपूर्ण डिजिटल युग है। यहां पर एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। पहले एक एक्सरे हुआ करता था जिसकी कन्वेंशनल एक्सरे, फिल्म निकाली जाती थी, परंतु आज के युग में डिजिटल एक्सरे है सब जगह। इसके बहुत सारे फायदे हैं, फास्ट है, इमेजेस आप ट्रांसफर करते हो, स्टिच कर सकते हो इमेजेस, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो एक्सरे तो हम लेते हैं और एक्सरे से बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है, पर आज जिस एक्सरे की हम बात कर रहे हैं वो हर दिन का जो एक्सरे है वो नहीं, एक जो संबंध है बहुत ही नाजुक जो संबंध है एक मरीज का और डॉक्टर का, उसका यदि एक्सरे निकाला जाए तो क्या हमें दिखेगा, क्या हम देख पाएंगे, क्या इस रिलेशनशिप में भी कोई डिसीज है, क्या इस रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ हो गया है कि नाउ इट इज अ टाइम टू एनालाइज इट, उसके बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। हमारा हॉस्पिटल है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में। इसकी जो शुरुआत, जैसे हमने कहा, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि के द्वारा शिलान्यास हुआ था 9 फरवरी 1990। अभी अभी कुछ समय पहले ही हमने 25th एनिवर्सरी मनाई हॉस्पिटल की। उस समय ऑनरेबल पोतेदार जी थे जो कि यूनियन मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया था और तब से लेकर अब तक 1991 से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें हुई है। आय हॉस्पिटल एक बना है, ट्रॉमा हॉस्पिटल एक बना है आबू रोड में, और नीचे जो आबू रोड है वहां पर एक कैथ लैब बनाने का भी अभी चल रहा है। ईएनटी स्पेशलिटी आय में तो बहुत एडवांसेस हो गए हैं वहां पर, और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहां पर, दो है कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जो हॉस्पिटल ने लगभग 60 विलेजेस को अडॉप्ट कर लिया है, और वहां पर रोज सुबह गाड़ी जाती है, वहां पर भी क्लिनिक होता है और वहां से बहुत सारे मरीजों को लेके आया जाता है, उनका कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट होता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हर समय कैंप लगते रहते हैं, आई कैंप लगते रहते हैं। तो इस तरह से बाकी भी चीजों का बहुत विस्तार है। और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि माउंट आबू जो है वो हिल स्टेशन है, तो कई सारे हमारे जो मरीज होते हैं वो टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ घूमने आते हैं। दूसरी चीज, वो पूरे एरिया में, सिरोही के एरिया में, माउंट आबू में जो ये जो हॉस्पिटल है, ऐसा इतना बड़ा और कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। इट इज अबाउट 120 बेडेड हॉस्पिटल, और ब्रह्मा कुमारीज का जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू में है। इस वजह से हमारा एक वर्ग जो है मरीजों का, वो इंटरनेशनल जो लोग वहां आते हैं, वो फिर ये जो अलग अलग सेंटर्स है उनके, वो जो लोग वहां आते हैं वो, तो एक ये वर्ग है वहां पर। फिर से इसी टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक चालू करूं, आपको यहां कुछ वीडियो क्लिप हम दिखाएंगे, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि ये जो संबंध है कितना नाजुक है और कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है ये संबंध। जब अर्चना बहन जी का हमको फोन आया कि आप डॉक्टर्स का ऐसा प्रोग्राम करो और उसमें किस विषय पर आप बोलोगे, तो उसी समय हमने एक पेशेंट को एडमिट किया था, कर ही रहे थे, हु हैड कम इन LVF एंड ही वॉज वेरी मच ब्रेथलेस, सैचुरेशन वॉज अराउंड 80s, ही वॉज इन द OPD। हम उसको एडमिट कर रहे, एडमिट कर दिया और ICU में भेजा, बीच में से रिलेटिव वापस आ गए। वो कहे नहीं, हमको जाना है, अभी हमारी अभी गाड़ी है, क्योंकि वहां घूमने आए हैं। पहले तो हाँ किया, फिर बाद में ना कर दिया। नाउ पेशेंट इज सो ब्रेथलेस, ही कैन कोलैप्स एनी टाइम, ही इज डिटियोरेटिंग, ही इज ब्रेथलेस, एंड स्टिल वो रिलेटिव कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं भर्ती कर सकते। पहले हाँ कहा, फिर हाँ चेंज कर दिया। तो हम सोच रहे थे, यही इंसिडेंट जब चल रहा था तब बहन जी का फोन आया, और फिर हमने सोचा कि ये जो टॉपिक है कितना डेलिकेट और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो उस वीडियो क्लिप की ओर चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, कि कभी कभी ये संबंध कितना मुश्किल हो जाता है एक मरीज को संतुष्ट करना, या फिर मरीज हमसे संतुष्ट हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आवाज, ऑडियो, ऑडियो, तो ये जो संबंध इतना जो सूक्ष्म, इतना डेलिकेट है, इसको हम कैसे, इसमें जो रोग है इसको मुक्त करें।
क्या हो डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई?
आ गई, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। लगता है बहुत निराश हो गया?
नहीं, वो बात नहीं, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था कि आप कैंसर एक्सपर्ट हैं।
एक्सपर्ट इन व्हाट? कैंसर देने में या इलाज करने में?
खैर कोई बात नहीं डॉक्टर, हाँ एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दीजिए।
दरअसल आपको सिर्फ दवाई खाने का शौक है। अगर मैं आपको 4-5 किस्म की रंग बिरंगी टैबलेट या कैप्सूल दे दूं, या किसी ऐसी दवा का नाम बताऊं जो 10 दुकानों में ना मिले, तभी आप खुश होंगे। समझेंगे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर।
देखिए डॉक्टर, अगर कोई दवा दे सकते हैं तो दीजिए, वरना शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं।
आप जा सकते हैं चंद्रनाथ जी।
ओह, आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है?
मैं दवा देने की फीस लेता हूँ, अक्ल देने की नहीं।
तो ऐसे मरीज को कैसे संतुष्ट करें? क्या किया जाए, ये एक प्रश्न है। और इस तरह के हर दिन कितने सारे अलग अलग स्वभाव के और संस्कारों के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ मरीज आते हैं हमारे पास।
ग्रीन और रेड कैप्सूल्स एक साथ लीजिएगा, उसके आधे घंटे के बाद पिंक टैबलेट, नेक्स्ट वही ग्रीन एंड येलो कैप्सूल, उसके आधे घंटे के बाद वही पिंक टैबलेट, और हाँ मैंने जो सफेद टैबलेट आपको दी है ना, उन्हें उसी तरह कंटिन्यू कीजिए, सुबह एक शाम एक। ओके अब कोई बात नहीं, आओ बात कर।
एक बात तो कहनी आपसे भूल ही गई डॉक्टर कुलकर्णी, आजकल न जाने मुझे क्या हो गया है, इतनी घबराहट रहती है। देखिए ना, पिछले ही महीने ब्लाउज सिलवाए, कितने टाइट हो गए और सेम साइज के कपड़े हैं।
नहीं नहीं मिसेस सन्या, इसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे आ जाइए।
ओ नो, नॉट सैटरडे डॉक्टर, सैटरडे मेरी चिट्ठी पार्टी है, फ्राइडे नहीं हो सकता।
फ्राइडे, लेट मी सी, ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग 9:00।
ओके, ये लीजिए डॉक्टर 500 रुपए का चेक, पिछले महीने का। अच्छा अब तुम्हें चलती हूँ।
थैंक यू।
आई
मीन फॉर दिस चेक।
ओह इट्स ऑल राइट डॉक्टर, बाय 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 बाय।
आवाज़ कर।
तो ऐसे हर प्रकार के मरीज हमारे पास आते हैं, हर दिन आते हैं, और उनसे जुड़े हुए हमारे जो संबंध है, कभी कभी उन संबंधों में थोड़ी कड़वाहट भी आ जाती है। तो ये जो संबंध है, इसका आज हम एक्सरे करेंगे। जैसे वो एक्सरे होता है, उसमें अलग अलग व्यू होते हैं, एपी व्यू, पीए व्यू, लैटरल व्यू। ये जो संबंध है, अगर इसका एपी व्यू लिया जाए, एपी व्यू अर्थात पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू अर्थात, इसकी अलग अलग हम परिभाषा सोच सकते हैं। एक तो पेशेंट मरीज को कैसे देखता है, वह व्यू, मरीज पेशेंट को कैसे देखता है वह एक व्यू, थर्ड पार्टी कैसे देखती है वह एक लैटरल व्यू, अलग अलग इसके व्यूज हो सकते हैं। तो जैसे कहा, हम एक्सरे में देखते क्या है, पहले तो फ्रैक्चर। क्या इस संबंध का यदि एक्सरे लिया जाए तो उसमें भी कोई फ्रैक्चर है, उसमें भी ऐसे कोई इमोशनल फ्रैक्चर्स है, ऐसे इनविजिबल फ्रैक्चर्स, सम इमोशनल ब्रेकअप्स। और क्या देखते हैं हम, कुछ इन्फेक्शंस देखते हैं, वी लुक फॉर निमोनिया, वी लुक फॉर सम पैच, सम इन्फेक्शन हियर एंड देयर, एंड देन वी गेट आइडिया, सम आइडिया अबाउट द डायग्नोसिस। इन द सिमिलर मैनर, इफ वी टेक द एक्सरे ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर वी गोइंग टू फाइंड सम इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस लाइक एंगर, infection like revenge, infection like fights. You must have heard so many times, it so happens that whenever we are unable to fulfill the expectations of the relatives or patient, they become aggressive to the extent that they beat up the doctors. So aisa bhi ho sakta hai jahan yahan dikhaya hai, roz akhbaron mein hum padhte rehte hain, mobs around and savagely beat doctors. Such incidents are so common nowadays. Some mass lesion, that's what we diagnose many times from x-rays. We see this and then later on we advise for further investigation. This mass lesion is something which is so deep rooted, it is so hard that we can't remove it just like that. So if we take the x-ray of this relationship and if we find something like mass lesion in the form of a deep hatred, a deep feeling of revenge, kisi doctor ke liye, koi ek choti si galti, parantu medico-legal cases, kya aisa bhi ho sakta hai, ya hum kahe aisa ho raha hai, to kya kiya jaye? ऐसा वो कौन सा संबंध है, वो कौन सा बंधन है जो एक डॉक्टर को एक मरीज से जोड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है विश्वास, एक फेथ। फेथ एक ऐसा संबंध है, हम ये नहीं कह सकते कि हम एलोपैथी के हैं तो केवल यही एकमात्र दवाई है और यही एकमात्र राइट मेडिसिन है। इट हैज बीन सीन दैट ईच एंड एवरी पैथी हैज हेल्प्ड पेशेंट इन सम वे और द अदर। रादर देन, अभी अभी एक लेक्चर हमारे यहां हुआ था जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, वी आर सो मच फुल ऑफ अवर सेल्स, हमको लगता है बस यही राइट है, हम जो दे रहे हैं वही राइट है। परंतु एक बहुत सूक्ष्म नियम, जिसको आपने सीक्रेट सीडी देखी होगी, उसमें भी इसकी काफी चर्चा है, आकर्षण का नियम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ फेथ। जिसका जिस पर विश्वास है वो उसी के द्वारा ठीक होता है। प्लासिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट क्या है? दवाई झूठी है फिर भी मरीज ठीक हो रहा है। नोसिबो इफेक्ट, दवाई सच्ची है परंतु पेशेंट का विश्वास नहीं है उसमें, इसके लिए वो ठीक नहीं हो रहा है। 1957 में एक इंडियन जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल मेडिसिन, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बहुत सुंदर आर्टिकल था, उसमें विदेश का वो आर्टिकल था। एक कैंसर का मरीज था जिसका नाम था मिस्टर राइट। उस मिस्टर राइट को लिम्फोसार्कोमा हो गया था, एक कैंसर की बीमारी, और वो सारी आशाएं खो बैठा था कि अचानक एक नया ड्रग आया 1957 में, क्रिबायोजिन, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, और ये दिखाया गया कि उससे दिस इज एन द ड्रग फॉर दिस लिम्फोसार्कोमा एंड इट हैड शोन अमेजिंग रिजल्ट्स। तो वो व्यक्ति तो आशा खो चुका था, तो उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर वेस्ट, उसने उसे कन्विंस किया कि हम आप पे ट्राई करेंगे। उसने कहा कि नहीं, डोंट ट्राई ऑन मी, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू लिव एनी मोर। फिर भी उसको कन्विंस किया गया, उसको वो दवाई दी गई, उसको समझाया गया कि इस दवाई से तुम बिल्कुल ठीक हो सकते, सारे रिजल्ट, सारी स्टडीज उसको समझाई गई, और 7 दिन के अंदर उसको पूरा विश्वास हो गया उस नए ड्रग पर, और विद इन 1 or 2 months ही गॉट फुल्ली क्योर्ड ऑफ हिज कैंसर। नाउ ही वॉज ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड, उसको डिस्चार्ज हो गया होगा, और वो सारी गांठें जो थी शरीर में सारी ठीक हो गई। वो घर गया और 1-2 महीने के बाद सारी अमेरिका में नया आर्टिकल पब्लिश हुआ कि वो जो ड्रग था दैट इज बोगस, उससे कुछ नहीं होता है, दैट इज नॉट द ड्रग, रियल ड्रग फॉर कैंसर। तो उसने वो आर्टिकल पढ़ लिया और फिर से उदास हो गया, और इतना उदास हो गया कि वो सारी बीमारी उसको फिर से आ गई। अब उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, परंतु इस बार उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर वेस्ट, उसको लगा नहीं, मुझे इसे मदद करनी है, एक बार जो ठीक हुआ उसको फिर से ठीक करना है। तो उसने उसको फिर से बुलाया और कहा कि जो फर्स्ट ब्रांड था मेडिसिन का, क्रिबायोजिन का, वो बोगस था, पर अभी अल्ट्रा प्योर ब्रांड आए हैं, वी विल ट्राई दोज ब्रांड्स ऑन यू। फिर से उसको कन्विंस किया गया, फिर से उसको वो दवाई दी गई, देखा गया सेकेंड टाइम ऑल्सो उसका वो बीमारी जो आई थी फिर से चली गई, फिर से ही बिकेम ऑल राइट एंड ही वॉज डिस्चार्ज्ड। कुछ महीनों के बाद फिर से एक जबरदस्त आर्टिकल सारी अमेरिका में पब्लिश हुआ कि वो दवाई जो थी एकदम ही झूठी दवाई है, कोई चांस ही नहीं है अब। पहली सेकेंड टाइम तो डॉक्टर ने कहा था अल्ट्रा प्योर मेडिसिन है, फर्स्ट ब्रांड में गड़बड़ थी, बट दिस टाइम इट वॉज बियॉन्ड डाउट दैट इट वॉज अ बोगस ड्रग, फेक ड्रग, काउंटरफीट। एंड दिस टाइम व्हेन दिस मिस्टर राइट रेड दैट न्यूज विच वॉज पब्लिश्ड ऑल ओवर, इस बार तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था, और विद इन 2 days ही डाइड। वॉट इज दिस, ये सब क्या है? प्लासिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। तो ये जो फेथ है, दिस ऑपरेट्स। फेथ हीलिंग हमने भारत में सुना है, इतने सारे स्पेशलिस्ट को दिखाया और जाके झाड़ फूक वाले से ठीक होता है फिर लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसका शायद विश्वास है उसमें। और भारत में आप देखेंगे ये जो फेथ हीलिंग है, कितनी अलग अलग वेराइटी से ये फेथ हीलिंग होता है, कितनी भिन्न भिन्न और स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वेज, एंड द मोर द मिस्टीरियस वे, द मोर रिडिकुलस द ट्रीटमेंट, द मोर चांसेस दैट पेशेंट गेट्स ओके, दे गो टू तांत्रिक एंड मांत्रिक्स They go to different peoples, to different quacks. It is, even somebody was saying few days back, even you say them, they are quacks. But that is how you are fulfilling your ego. Why you say that they are quacks? Probably your medicine might be quackery. So, ये जो faith healing है, कैसे ये लोग ठीक करते थे? कि जो strange, जिसका कोई लेना देना नहीं है modern medicine से, allopathy से, they are absolutely non-scientific. But still, धूप, अगरबत्ती, झाड़फूक, strange ways, all over the world की अगर history study की जाए, all over world का अगर medicine study किया जाए, तो ये अलग-अलग विधियां हमको दिखाई देती है. कोई बाबा, विभूति, क्रिश्चियनिटी में और अलग-अलग जगह पर. तो what is that principle that is operating here? It is the law of faith. जहां जिसका जितना विश्वास वो उतना जल्दी उसमें ठीक होता है व्यक्ति. अगर आप भिन्न-भिन्न धर्मों में भी जाओ, तो वहां पे भी लिखा है, वहां पे भी ऐसे कई सारे उदाहरण. विदेश में तो कम है, भारत में सबसे ज्यादा है. हर 100 किलोमीटर में कोई एक व्यक्ति बैठा है जो ठीक करता है लोगों को. उसके पास कोई साइंटिफिक ये नहीं है. मिरेकल्स डू नॉट हैपन इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नेचर बट इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ व्हाट वी नो अबाउट नेचर. हो सकता है शायद हम बहुत अभी तक जाने नहीं है. हर मेडिसिन की किताब में, हैरिसन की बुक में लिखा है, मेडिसिन इज एवर चेंजिंग मेडिसिन. मेडिसिन इज एवर चेंजिंग साइंस. जो 10 साल पहले कॉन्सेप्ट थे वो अभी आउट हो गए. डिजिटलिस जो चीज के लिए पहले यूज किया जाता है, अब इट इज नॉट यूज्ड. व्हाट यू यूज्ड टू थिंक दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इट शुड बी गिवन. देयर वाज अ टाइम वंस अपॉन अ टाइम व्हेन दे यूज्ड टू से दैट बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर. पर अभी कॉन्सेप्ट्स हैव टोटली चेंज्ड. बीटा ब्लॉकर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस. द मोमेंट यू कन्वर्ट इंजेक्टेबल डायरेटिक्स इनटू ओरल फॉर्म, यू हैव टू पुट द पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर्स. दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव. कैसे कॉन्सेप्ट्स क्या थे और अभी कैसे चेंज हो गए? मे बी आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज मोर. तो वी कैन नेवर से दैट दिस इज द ओनली राइट थिंग. कोई भी क्रिटिकल केयर मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस, कोई भी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस, उसमें कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं. इन शॉक वेदर डू गिव क्रोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स और व्हाट. एवरी डे न्यू रिसर्च, एवरी डे न्यू साइंस. सो देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड ऑल दिस. दिस इज अ वेरी गुड सेइंग बाय शेक्सपियर. देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी. शेक्सपियर का हैमलेट अपने सेनापति से कहता है, जब हैमलेट को भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं और वो होरेशियो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, तब हैमलेट उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें अब तक इस संसार में है जो तुमने नहीं जानी है. सो इट इज द फेथ. इतनी पावर है उसमें. इवन द पॉइजन ऑफ द स्नेक इज पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट. दिस इज द पावर ऑफ फेथ. So that is the first principle that binds a patient and doctor. Are we able to create that much faith in our patients? Or they still keep on asking, should we go here or there or there or there? So many things are there. And second important thing is love, care, attention. Har jo mareez aata hai, he comes with negative energy. Ek नकारात्मक एनर्जी ऊर्जा लेकर वो आता है. उसके दर्द, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसकी वो असहायता का भाव, हेल्पलेसनेस की स्टेट, उसमें वो हमारे पास आता है. और उसमें उसकी थोड़ी सी एक गलती से हम अगर इरिटेट हो जाते हैं, एक ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेज वहां क्रिएट होता है, एक इमोशनल ब्लॉकेज वहां क्रिएट होता है. वो जो फेथ का संबंध है, वो जो विश्वास का नियम है, वहां पर आहत होता है. पेशेंट हमारे पास क्यों आता है? उसको क्या चाहिए? उसको केयर चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको प्रेम चाहिए. शायद मिल नहीं रहा है. वो एक पॉजिटिव एनर्जी की तलाश में आता है हमारे पास. यदि हम उसको वही नहीं दे, तो ये जो संबंध है, इसमें वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग उत्पन्न होंगे. परंतु हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हम व्यस्त है. अगर आप सरकारी अस्पताल या यहां वहां जाओ, तो एक एक डॉक्टर कितने सारे पेशेंट्स देखता है. परंतु इस दौड़ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा अपने जीवन का अनुभव लिखा है, उसने लिखा है, आई स्पेंट माई लाइफ इन सर्विस ऑफ द पुअर, द लॉस्ट, द लोएस्ट, द हैपलेस एज अ डॉक्टर, पर फिर भी एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स, जैसे कि जीवन इन उंगलियों से खिसक गया है। कहीं ना कहीं वैक्यूम है, कहीं ना कहीं एक मिसिंग डायमेंशन है, अ स्पिरिचुअल वैक्यूम इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर। हम उनको समझ नहीं पाते। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक मरीज 80 साल का एक बूढ़ा एक सर्जन के पास आते हैं और एक हफ्ता पहले कुछ चोट लगी थी, वो स्टिच करना सूचर रिमूवल के लिए, और वो इतना जल्दी करते हैं कि ही इज इन द रो क्यू सिटिंग देयर, बट ही वॉन्ट्स टू बी टेकन फर्स्ट। तो डॉक्टर को भी लगता है कि शायद इनको बहुत जल्दी होगी, तो उस मरीज को लेते हैं और उनका स्टिच वो रिमूव करते, स्टिच रिमूव करते करते उससे पूछते हैं, क्या आप कहीं जल्दी में हो? वो कहता है हाँ। क्या आपको कहीं जाना है? वो कहता है हाँ। क्या कोई सीरियस है? वो कहता है नहीं, मेरी पत्नी भर्ती है एक दूसरे अस्पताल में। तो डॉक्टर को आश्चर्य लगता है, शायद वो बहुत सीरियस होगी या इमरजेंसी होगी। तो वो उसको पूछता है क्या करना है आपको? वो कहता है मुझे अपनी पत्नी के साथ में 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, वो भर्ती है हॉस्पिटल में, उसके साथ मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो सर्जन स्टिचेस तब तक रिमूव करता है, थोड़ी ड्रेसिंग करता है और उसको पूछता है, अगर आप थोड़ा लेट हो जाओगे तो क्या वो अपसेट हो जाएगी? वो कहता है नहीं, वो मुझे पहचानती नहीं है, शी इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिसीज, पिछले 5 साल से वो किसी को ही नहीं जानती। तो वो सर्जन पूछता है, वो आपको जानती भी नहीं या भूल गई है, पहचानती नहीं किसी को ही, वो जो बीमारी उसको हुई है डिमेंशिया, जिसमें सब भूल जाता है व्यक्ति, तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि बट आई नो हर, शी माइट नॉट रिकॉग्नाइज मी बट आई रिकॉग्नाइज हर। इतना डीप बॉन्ड वो और उसकी पत्नी में है, और हमारे लिए वो केवल एक पेशेंट है, हमारे लिए ही इज जस्ट नेक्स्ट केस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। परंतु उसके कितने सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, कितनी सारी फीलिंग्स उसकी है। वी नीड टू सी ऑल्सो दोस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, वी हैव टू सी दिस पेशेंट फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, नॉट जस्ट फ्रॉम आवर डायमेंशंस। हम कई सारे आईसीयू में काम किए तो वहां पर एक बात हमको कभी अच्छी नहीं लगी, जहां पर पेशेंट्स को बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 56, बेड नंबर 52। एक हॉस्पिटल में हम थे, मुंबई का बहुत जाना माना और बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर जो हम लोग वहां पीजी कर रहे थे और ओवर देते थे हमारे कंसल्टेंट्स को, बेड नंबर 56 आईसीडी रिमूव्ड, बेड नंबर 52 पेशेंट एक्सट्यूबेटेड, बेड नंबर 62 ये हुआ, ये इसी भाषा में बात करना होता था। नाम कोई भी पेशेंट का किसी को भी पता नहीं, कोई भी पेशेंट का नाम नहीं पता, बस ऐसे ही बेड नंबर 52 पे भैया आया, बेड नंबर 62 पे वो है, बेड नंबर 72 पोस्ट सीएवीजी, बेड नंबर 72 ट्रॉमा केस, लाइक दिस। तो इसमें वो बॉन्ड कभी नहीं बनता। व्हाट द पेशेंट वांट्स इज दिस, व्हाट द पेशेंट वांट इज दिस, व्हाट द पेशेंट वांट इज दिस, ही हैज कम टू यू फॉर दीज, आर वी मिसिंग इन दीज डायमेंशंस, वी नीड टू चेक। इफ यू कुड लुक इनटू द ईच अदर्स हार्ट एंड अंडरस्टैंड द यूनिक चैलेंजेस ईच ऑफ अस फेसेस, आई थिंक वी वुड ट्रीट ईच अदर मच मोर जेंटली विथ मच मोर लव, पेशेंस, टॉलरेंस एंड केयर। जितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा। नेक्स्ट इज 3 आर्स। क्या है ये 3 आर? रिस्पेक्ट। एवरी पेशेंट वांट्स रिस्पेक्ट। वो नहीं चाहते कि हमको इस तरह से पुकारा जाए, केस, लेबल, बेड नंबर। पेशेंट को उनके नाम से पुकारना है, फर्स्ट नेम से। दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ स्ट्रांग बॉन्ड, that itself creates a strong bond. द मोमेंट यू एड्रेस समबडी बाय हिज फर्स्ट नेम पर्सन लाइक्स दैट फर्स्ट इज द रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ सेकेंड इज द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शंस वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी डू सो मेनी मेडिकल लीगल केसेस जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं निग्लिजेंस मेडिकल निग्लिजेंस क्या है ये सब पेशेंट की डेथ हो रही है डेथ के बाद नोट्स लिखे जा रहे हैं एज इफ वी हैव सीन दो द डॉक्टर हैज नॉट सीन द पेशेंट डॉक्टर हैज रीच ओनली आफ्टर द पेशेंट हैज डाइड पर नोट्स सारे पुराने लिखे जा रहे हैं सो मेनी मैनिपुलेशंस सो मेनी थिंग्स बट वॉट we should have is this responsibility. The entire medical universe revolves around that patient. Respect for others, respect for self. ये जो होगा ये तभी होगा जितना हमारा अपने लिए respect है जितना हम self respect अस्मिता स्वामी भान में हम टिके हैं उतना ही हम दूसरों को भी दे सकते हैं तो respect. अगला है ये वही रिस्पेक्ट के बारे में दिखाया है विदेश में इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं क्या होता है जब रिस्पेक्ट दिया जाता है पेशेंट को उसकी बीमारी को हम समझे क्या है अगला है पेशेंट लिसनिंग पेशेंट के दोनों ही अर्थ यहां ले सकते हैं हर पेशेंट चाहता है कि मुझे कोई सुने घर वाले सुनते नहीं है इसके लिए तो डॉक्टर के पास आते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास लोग क्यों जाते हैं काउंसलर्स के पास क्योंकि वो एक ही ऐसे होते हैं जो सुनते हैं उनको और उनका जो सुनना होता है नॉन जजमेंटल होता है घर वालों को बताते हैं तो उनके पहले से ही प्रीफॉर्म्ड ओपिनियन पूर्वाग्रह है ये वैसा ही है यहां कुछ हो रहा है तो वो कहते हैं कुछ नहीं गैस का ही होगा तुमको हमेशा ही होता है बट इट कुड बी MI हार्ट अटैक It could be anything. So most important thing is, और हमने मैंने खुद अपनी personal जो रोज का हमारी practice है उसमें देखा है कि patient जब भी कोई complaint करता है ultimately बहुत बार देखा गया है कि that was right what he was saying. एक बार एक patient थी एक ब्रह्मा कुमारी बहन हमारे पास आई थी और उसका loose motion non-stop All blood test done, stool culture, blood culture, everything negative. What was it? Nobody was understanding. It was such a difficult diagnosis. Patient had already a big file. She had come from different hospitals. Extensively investigated. But we couldn't figure out what exactly she was having. Kya hai usko kisi ko samajh mein nahi aa raha tha. Probably... That was something, there was something which was missing in her case. What was it? And then we asked our DNB students to take a detailed history of that patient. Even they couldn't find out anything more. Then we ourselves, I and one more doctor is there. We sit down with the patient and we try to find out the details of the history. So usne ek history humko bataya, uska jo ungli hai, That was something like vasculitis ki history jaise de rahi ho. And she also had slight reddish appearance of the cheek. So immediately we thought, is it something connective tissue disorder or SLE? All the investigations and DSDNA aur baki sara bheja gaya, sab positive aaya. Immediately she was put on pulse therapy of methylprednisolone steroid. और दो तीन दिन में ही उसका लूज मोशन स्टॉप हुआ दैट हिस्ट्री वॉज मिसिंग एंड दैट कम्स ओनली आफ्टर दिस पेशेंट लिसनिंग लिसनिंग टू वॉट पेशेंट इज सेइंग वो क्या कह रहा है उसकी क्या कंप्लेंट है दो वी हैव टू हैव दैट क्लिनिकल अक्यूमन कि वो क्या कह रहा है उसमें से छांट लेना जो काम का नहीं है और जो काम का है तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कितना हम टाइम दे रहे हैं भारत में लगभग 420 या 26 मेडिकल कॉलेजेस एवरी ईयर अबाउट 50,000 to 60,000 MBBS लोग निकलते हैं 25,000 PG स्टूडेंट्स PG करके बाहर आते हैं अगर ये देखा जाए तो जितनी पॉपुलेशन को जरूरत है डॉक्टर्स की बहुत कम है So that is also a major factor. We have so many patients to see. But quality is suffering somewhere. Fifth is empathy or understanding. जब तक ये empathy नहीं आएगी, empathy is not sympathy, sympathy is सहानुभूति, empathy समानुभूति. वो जो अवस्था में है, जो suffering उसकी है, उसको हम जितना गहराई से हम समझ पाए, उतनी ही हमारा उसके साथ जो interaction है, हमारी उसके साथ जो care है, वो improve होगी. Understanding, जैसे उसमें भी कहा, नहीं तो हमारी गति पंचतत्र में तंत्र में दी हुई ये जो कहानी है अंधों की, किसको लगता है ये है, किसको लगता है वो है, किसको जहां जहां जो जो हाथ लगा रहा है. वी आर अनेबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड दैट्स मिसअंडरस्टैंडिंग अराइजेस. इसके लिए ये जो संबंध है, एक जो बहुत मिसिंग डायमेंशन है वो है अंडरस्टैंडिंग का. जब तक ये डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और ये दोनों तरफ से भी चाहिए, पेशेंट की तरफ से भी चाहिए. वो दिखाते हैं ना कहानी में कि एक सर्जन को जल्दी बुलाया जाता है, वो वहां पहुंचता है और वहां पर एक पिता होता है, वो चक्कर लगाते रहता है और इतना चिल्लाता है डॉक्टर के ऊपर, मेरा बेटा इतना सीरियस है और आप कहां हो. तो डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, अभी अभी मुझे कॉल आया और मैं आ गया. और उसके बेटे का जहां एक्सीडेंट, रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट केस, ऑपरेशन करते हैं न्यूरोसर्जन, लंबा समय तक सर्जरी चलती है, सर्जरी के बाद में वो डॉक्टर बाहर आते हैं, तो वो पिता अभी भी गुस्से में है, तो उसको कहते हैं कि अभी वो ठीक है, बेटा बच गया है. और वो कहता है, बट आई एम इन हरी, और जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं. तो वो डॉक्टर, वो जो मरीज के पिताजी होते हैं, वो सिस्टर को कहते हैं, कैसा डॉक्टर है ये, तमीज भी नहीं है, कम से कम बात तो करना चाहिए रिलेटिव्स के साथ. परंतु वो डॉक्टर तो स्माइल करके चला जाता है. वो सिस्टर कहती है, शायद सभी ने सुना है ये, डॉक्टर्स ने तो सुना ही है. वो सिस्टर कहती है, उसके खुद की बेटे बेटा मर गया है, और हमने जब उसको कॉल किया तो ही वॉज ऑलरेडी इन द फ्यूनरल. उसके बीच से उसको बुलाकर आपके बेटे की सर्जरी उसने की, एंड देन ही लेफ्ट इमीडिएटली. ये जो डायमेंशन है, ये तभी आएगा कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट भी हमको समझे, परंतु हम उनको कितना समझते, पहले तो हम भी उनको समझे, फिर उनको भी ये सिखाया जाए कि हमारा जीवन क्या है, हम कितने व्यस्त रहते हैं और कैसे, कब आपको कॉल करना है, नहीं तो कभी भी उठ के वो कॉल करते हैं, रात को 12 बजे कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कल आप है क्या, केवल ये पूछने के लिए. रात को 11 बजे कॉल करते, कॉन्स्टिपेशन सिंस लास्ट 3 डेज, 3 दिन क्या किया, सिली रीजंस के लिए. बट वी नीड टू टीच देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. एम्पैथी, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील. वही जिसको लगा है वही दूसरे को समझ सकता है जिसको लगा है. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. हर एक पेशेंट ये चाहता है कि मैं जो बातें डॉक्टर को बताऊंगा वो डॉक्टर किसी और को ना बताए, और हमने यदि वो इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो उसका जो विश्वास है वो आहत होता है कहीं ना कहीं. ये तो वैसे सभी करते ही है, वी कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल. फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता और वो विश्वास ठेस पहुंचती है. पेशेंट को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि इस डॉक्टर ने सब जगह ये बात फैला दी. हम कितना भी कोशिश करें उसको छुपाने की, फिर भी इसके लिए ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी. नेक्स्ट है, हर पेशेंट चाहता है कि जो बीमारी है उसके बारे में उसको सारी जानकारी हो, एंड इट इज अवर लीगल और आई विल से इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन हिम व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. हमारे हॉस्पिटल में ऑल ओवर वर्ल्ड के पेशेंट आते हैं, तो हम एक कंपैरिजन करते हैं भारतीय पेशेंट और विदेश के पेशेंट. वो हर एक चीज समझना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ना, आयरोड रोजुआ स्टैटिन, व्हाट इज इट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, हर चीज जानना चाहते हैं. इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव, क्या दवाई लेनी ही चाहिए, बहुत सारे उनके प्रश्न होते हैं. और मेनी पीपल तो सारे गूगल डॉक्टर, से देख के आते हैं, उनका डॉक्टर गूगल है, पहले से सारा अपना डायग्नोसिस करके फिर आते हैं। तो हर पेशेंट को चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आप उसकी बीमारी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग उसकी बीमारी के बारे में, कौन से इन्वेस्टिगेशन है, प्रोग्नोसिस क्या है, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देर आर मेनी पेशेंट्स हु आर वेरी मच बोल्ड टू एक्सेप्ट दिस। विदेश में देर वॉज वन ऑथर एंथनी बर्जेस, एट द एज ऑफ 40 ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर, और उसको कहा गया कि अगले 6 मास में बस, अगले 6 मास तक आप हो बस। उसने उस 6 मास में 3-4 नॉवेल, ही वॉज नॉवेलिस्ट, 3-4 नॉवेल अपने जीवन के सर्वोत्तम कार्य उस 6 साल महीने में कर दिया, और बाद में पता चला उसकी बीमारी दवाई आ गई है उस कैंसर की, एंड ही डिड नॉट डाई, वो आराम से 80 साल तक जिया। परंतु वो कहता है कि वो 6 मास में जो मेरी स्थिति थी कि अब जाऊं और तब जाऊं, उसमें मेरे जीवन के सर्वोत्तम पल थे, वो बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सो हर पेशेंट चाहता है कि उसको समझाया जाए, उसकी बीमारी के बारे में समझाया जाए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, हर चीज के बारे में। अगला है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, क्या डायग्नोसिस है और क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं, दोनों तरफ से है, हमारा भी अपना डायग्नोसिस क्लियर हो। कई सारे मरीज आते हैं कि हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है, ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, शायद हमारा मेडिकल नॉलेज अपडेट नहीं है, जो 10 साल पहले कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर हम अब तक भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। दैट इज द नीड फॉर अटेंडिंग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, नोइंग टू कीप वन सेल्फ अपडेट, एब्सोल्युटली अपडेटेड, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी कितनी सारी चेंज होती रहती है, जो कहा पहले भी। अगला, सेकेंड ओपिनियन, जैसे पहले भी कहा, I already diagnosed myself on the internet. I am here only for second opinion. आज संसार यहां पर है, इंटरनेट से डायग्नोसिस हो गया है, डॉक्टर के पास खाली सेकेंड ओपिनियन के लिए आ रहे हैं। तो ये जो सेकेंड ओपिनियन है, जैसे हमारे पास लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं, ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर को दिखाया है, हमारे पास सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं, वैसे ही हमारा पेशेंट भी दूसरे डॉक्टर के पास सेकेंड ओपिनियन के लिए जाएगा। इसके लिए इसका दुख नहीं होना चाहिए। जैसे उनके मरीज हमारे पास आते हैं, हमारे मरीज भी उनके पास जाएंगे, जबकि हमने सब कुछ समझा दिया है, यह ऐसा 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 है, फिर भी वो जाएंगे, और जाना ही चाहिए, अच्छी बात है। हम ऐसा स्टैंप नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी दो डॉक्टर के बहुत कम बार होता है ओपिनियन मिलते हैं, एक बीमारी के बारे में और एक ट्रीटमेंट के बारे में, बहुत कम। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास पर्ची आती है, हम देखते हैं ये किसने दिया, दिस इज आउटडेटेड, बट वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर कलीग्स ऑल्सो। चलो कितने भी आउटडेटेड है या जैसे भी है, परंतु पेशेंट के सामने ये कहना, तो पेशेंट का उस डॉक्टर में जो विश्वास है उसको भी हम चोट कर रहे हैं। सेकेंड ओपिनियन। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट, पेशेंट नीड्स एनकरेजमेंट। जैसे कहा कि उसको इच्छा है कि सब कुछ समझे अपनी बीमारी के बारे में, वैसे उसे एनकरेजमेंट की भी बहुत जरूरत है। एक डिप्रेशन सा आ जाता है। एक बहुत सुंदर कहानी लिखी गई है कि एक अस्पताल में दो मरीज थे, एक मरीज खिड़की के पास, दूसरा मरीज बाजू में, एक ही कमरे में, दोनों ही कैंसर के पेशेंट, अब गया तब गया, ऐसी कंडीशन, पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल, हॉस्पिस जिसको कहते हैं, ऐसे इसमें थे वो, कि जहां पर कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं, खाली देखभाल के लिए वो हॉस्पिटल लाया गया है। एक मरीज तो जो था खिड़की के पास था, उसको दिन में 1 घंटे के लिए प्रॉप्ट अप किया जाता था, खड़े रखा जाता था बैठे बैठे, और वहां पर एक खिड़की थी। दूसरा जो मरीज था उसको बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि स्पाइन कैंसर था और पूरा फैल गया था, ही कुडंट स्टैंड अप प्लेन। तो और जो दूसरा मरीज था वो बाजू का, वो अंधा था, उसको दिखता नहीं था कुछ। तो ये जो दूसरा मरीज था, अंधा मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, पूरा नहीं देख पाता था। तो ये जो दूसरा खिड़की के पास वाला मरीज था, जब भी खिड़की में एक घंटे के लिए उसको बैठने दिया जाता था तो वो खिड़की से बाहर जो कुछ भी दिखता था वो सब सुनाता था उसको, जो उठ नहीं पाता था। वो सुनाता था देखो कितनी अच्छी हरियाली है, तालाब है, लोग घूम रहे हैं, कभी मिलिट्री का मार्च वहां से जा रहा है, क्षितिज दिख रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, ऐसी अलग अलग रोज बातें उसको बताता था। तो ये जो मरीज था उसको थोड़ा कम दिखता था पर दिखता तो था, तो ये सोचता था कि मैं कब देख सकूंगा ये सब, परंतु वो मन की आंखों से सब देखता था। बाजू वाला मरीज डिस्क्राइब करता था, बताता था, और ये मरीज सुनता था जो भी बातें वो बताता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह सिस्टर आई और देखा खिड़की के पास वाला मरीज मर गया है, तो सिस्टर ने ऑर्डर किया बॉडी को ले जाओ। तो दूसरा जो मरीज था बाजू का, उसके अंदर इच्छा हुई, उसने पूछा यहां कोई दूसरा पेशेंट आने वाला है क्या? सिस्टर ने कहा नहीं। तो उसने पूछा क्या मैं बेड चेंज कर सकता हूं, खिड़की के पास जा सकता हूं? सिस्टर ने कहा ठीक है जा सकते हो। वो खिड़की के पास आया और उसने कहा कि मुझे एक बार देखना है खिड़की के बाहर क्या है, एक साल से रोज ये मरीज जो जिसने शरीर छोड़ दिया है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है कितना सौंदर्य है उधर बाहर, झाड़ पंछी पक्षी, रोज नई नई बातें, भले मैं देख नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं उठ नहीं पाता हूं, फिर भी मैंने मन की आंखों से सब देखा, पर आज मुझे वास्तव में देखना है क्या है। तो वो सिस्टर को बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, मुझे एक बार देखने दो, बस प्रॉपटअप करो थोड़ा सा। सिस्टर उसको थोड़ा प्रॉपटअप करती है और सामने वो देखता है तो एक दीवार, केवल दीवार, कोई लेक नहीं, कोई पंछी नहीं, कुछ भी नहीं। सिस्टर को पूछता है वो, उस मरीज ने मुझे एक साल तक रोज नई नई बातें बताई, वो सब क्या थी? सिस्टर कहती है शायद वो आपको एनकरेजमेंट के लिए उसने की, और सबसे महत्वपूर्ण वो जो मरीज था खिड़की के पास वाला, ही वॉज 100% ब्लाइंड, फिर तो सवाल ही नहीं आता है क्या वो बताया है। तो क्यों किया उसने ये सब? जस्ट टू एनकरेज दैट अदर पर्सन, अदर पेशेंट। एक पेशेंट दूसरे मरीज को इतना एनकरेज कर सकता है, कैन नॉट वी एज अ डॉक्टर एनकरेज अ पेशेंट एंड गिव देम वर्ड्स ऑफ होप? इज नॉट दिस द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मैनकाइंड? सेटिस्फैक्शन, पेशेंट हमारे पास क्यों आता है? संतुष्टता के लिए। हम कई हॉस्पिटल्स में इस तरह का चार्ट होता है, फीडबैक फॉर्म, कितना सेटिस्फाई होके पेशेंट जा रहा है, या यहां आके एब्सोल्युटली अनसेटिस्फाइड है, हर चीज से दुखी है, बेड से दुखी है, कमरे से दुखी है, स्टाफ से दुखी है, डॉक्टर से दुखी है, दवाई से दुखी है, मेडिसिन से दुखी है, लेबर सर्विस से दुखी है, हर चीज से दुखी है। वी नीड टू एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। Our aim is that once a patient comes to us, we need to see that he goes from this place satisfied. Though this is a very, very missing dimension, but यदि हमें अपने जीवन में वो संतुष्टता चाहिए, तो हमें दूसरों को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये medical profession में जैसे उस doctor का बताया, life has slipped through my fingers, एक vacuum ही रह गया है बस। This should not happen. करेज टू फेस रियालिटी। कई बार मरीज को ऐसे रोग होते हैं, असाध्य रोग, इनक्यूरेबल, हमें उन्हें साहस देना पड़ेगा, शक्ति देनी पड़ेगी ताकि उस आघात को सहन कर सके। रादर देन कीपिंग देम इन द डार्क, वी नीड टू हेल्प देम फेस द रियालिटी। तो ऐसी ये टोटल 12 बातें इस संबंध के बारे में हमने कही, और जब ये 12 ही बातें नहीं रहती है तब उस संबंध में इमोशनल फ्रैक्चर्स, मास लीजन्स, कंजेनाइटल एनोमलीज, सब कुछ होगा, एंड सो डिफिकल्ट टू डायग्नोज समटाइम्स। सो दिस एक्सरे ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इमोशन इज सो इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस I end this presentation with a short prayer. आप सब ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इस सब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन एक थोड़ा सा आपको मेडिटेशन कराएंगे, तो आप सभी थोड़े देर के लिए और बैठे रहिए। थैंक यू। ओम शांति।